نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ بھی سیکھنے کے لیے آج بیٹھے ہوئے ان سب کو استقامت عطا فرما. یا رب العالمین اس قافلے کو جیسے آج یہ اپنا سفر شروع کر رہا ہے، تو یا اللہ تعالیٰ اسی جوش اور شوق اور ہمت کے ساتھ اس سفر کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا فرمانا، اور اللہ شیطان کے حملوں سے ہم سب کو محفوظ رکھنا. پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا تعوذ اور بسملہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جو الفاظ ہیں ان کو تعوذ کہتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الفاظ کو ہم بسملہ یا تسمیہ کہتے ہیں. تو آپ نے پھر اس کی پریکٹس کی کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اس کو آپ نے ہر موقع پر ساتھ رکھنا ہے، شامل رکھنا ہے، خاص طور پہ بسم اللہ کو. اور اعوذ باللہ بھی اتنی ضروری ہے کیونکہ ہر وقت ہی ہمیں شیطان کے حملوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اور آپ کو شیطان کا مطلب اب پتہ چل گیا ہوگا، شیطانہ سے جو آپ کو بتایا تھا، تو اب تو نہیں کہیں گے کسی بچے کو یہ بڑا شیطان ہے. ہم اکثر مائیں کہتی ہیں یہ میرا بچہ بڑا شیطان ہے، استغفر اللہ، یعنی شیطان کا مطلب کتنا برا ہے نا. تو پھر آپ اپنے بچے کو کہہ دیں بہت شرارتی ہے، لیکن کبھی نہ کہیں بہت شیطان ہے، شیطان تو بہت بری ذات ہے، ٹھیک ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ بھی ہم نے دیکھے. اس کے بعد ہم نے کبھی بھی کسی لیٹر پر یا کسی چیز پہ 786 لکھ کے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے بسم اللہ پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے. 786 بسم اللہ نہیں ہے، وہ ایک ایک حرف کا انہوں نے کوئی نمبر نکال کے اور 786 بنا لیا. نہ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایسا تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا سکھایا، تو کیوں ہم 786 ایک نئی چیز نکال کے بس بسم اللہ کے اتنے پیارے الفاظ کو چھوڑ کے 786 لکھ لیتے. اور بسم اللہ اس لیے نہیں لکھتے کہ بے حرمتی ہوتی ہے جی اس کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھیں کافروں کو جو خطوط لکھے ان میں بھی بسم اللہ سے سٹارٹ کیا، کافر کو خط لکھتے ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں یہ کیا کہ بے حرمتی ہوگی اس لیے میں لکھتا ہی نہیں ہوں. تو ضرور بسم اللہ کہا کریں، لکھا کریں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ جی میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جو مکسلر پر لوگ ہیں آپ کہہ رہے ہیں ذرا اونچا پڑھیں، تو میرے خیال میں اسپیکر وغیرہ لگا لیں آپ تو بہتر ہوگا. سورۃ الفاتحہ، پہلی سورۃ قرآن پاک کی آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ اس قدر اہم سورۃ ہے، یعنی سمجھ لیں سب سے امپورٹنٹ سورۃ جو قرآن کی ہے نا، آج ہم وہ پڑھنے جا رہے ہیں. کیونکہ یہ جتنی زیادہ پڑھی جاتی ہے اس سے زیادہ کوئی اور سورت نہیں پڑھی جاتی. جتنا زیادہ ہم اس کو دہراتے ہیں دن میں اتنا زیادہ کسی اور سورت کو نہیں دہراتے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ نماز میں جتنی رکعت بھی ہم پڑھتے ہیں، ہر ایک رکعت میں جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس وقت تک وہ رکعت مکمل نہیں ہوتی. اسی لیے آپ دیکھ لیں دن میں سنتیں ملا کے، نفل اگر ملائیں گے تو اور زیادہ ہو جائیں گی، ان سنتیں میں ملا لیں فرائض کے ساتھ، تو 30 سے اوپر ٹائم ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ. اور سال بھر میں اس کی گنتی کر لیں تو 11,000 مرتبہ سے زیادہ پڑھ لیتے ہیں ہم سورہ فاتحہ، ماشاءاللہ. اور ہر ٹائم اس گلوب پر کوئی نہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، ایسا ہی ہے نا، کوئی نہ کوئی ہر وقت میں نماز پڑھ رہا ہے. اگر ہماری طرف اس وقت صبح کا ٹائم ہے تو کہیں اور عشاء کا ٹائم ہوگا، کہیں اور مغرب کا ٹائم ہوگا، کہیں ظہر کا ٹائم ہوگا، تو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ادروائز نوافل پڑھ رہے ہیں. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر آدھی امت بھی نماز پڑھتی ہے تو کتنے یعنی لاکھوں اربوں کھربوں ٹائمز सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। इसके बावजूद कि ये इतनी दफा पढ़ी जाती है और हर इंडिविजुअल पढ़ता है, और बल्कि हदीस में आता है जो किताब की फातिहा नहीं पढ़ता इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, यानी इसका मतलब है कि वो तो मुसलमान ही नहीं है। जिसको फातिहा याद ना हो, पढ़ने से मतलब ये कि उसको याद रखना, तो इससे मालूम होता है कि सूरह फातिहा कितनी इंपॉर्टेंट सूरह है, लेकिन हम में से अक्सर इसका तर्जुमा नहीं जानते, इसके माने की डेप्थ नहीं जानते, थोड़ा सरसरी भी नहीं जानते कि इसके अंदर है क्या और ये कितनी ज्यादा फजीलत वाली सूरह है, कितनी ज्यादा फजीलत वाली है। इसको तो बस ऐसे ही समझते हैं कि बस फातिहा पढ़ ली, सबको नाम पता है लेकिन इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं मालूम। हालांकि जितनी ज्यादा ये सूरह इस ग्लोब पे पढ़ी जाती है, इससे ज्यादा कोई कलिमा, कोई काफिर भी, कोई कलिमा ऐसा नहीं है जो इतना ज्यादा पढ़ा जाता हो। काफिर तक भी कोई कलिमा नहीं पढ़ते, यानी पूरी दुनिया पे अगर देख लेना तो सबसे ज्यादा सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। तो आज इतनी इंपॉर्टेंट सूरह को हम पढ़ने जा रहे हैं, अब इसकी इंपॉर्टेंस को देखकर फिर चाहिए कि हम बहुत गौर से इस सूरत को पढ़ें और सुने। हमने अभी तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़ लिए हैं अल्फाज, ये आयत, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से आज हम शुरू करेंगे। मगर क्या जो हमने बसमला पढ़ा है वो सूरह फातिहा का हिस्सा है या नहीं है हिस्सा, इसमें उलमा का इख्तलाफ है। बाज कहते हैं कि ये सूरह फातिहा का हिस्सा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बाज कहते हैं कि नहीं, जैसे हर सूरत को बिस्मिल्लाह से शुरू करना चाहिए तो इसी तरह इसको भी करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि ये इसका हिस्सा है। बार कैफ बोथ साइड्स पे बड़े बड़े उलमा हैं, इसलिए हम इस बारे में कुछ कोई बात भी नहीं कहेंगे, बस हम ये बात को जहन में रखेंगे कि बाज इसको सूरह फातिहा का हिस्सा समझते हैं, और वो फिर जो हिस्सा समझते हैं फिर वो यानी आगे इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं कि सात आयात हैं इसमें, तो आप गिन के देखेंगे तो सात आयात हैं। जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करते हैं वो अनअमता अलैहिम पे जाकर इसको यहाँ पर एक और आयत समझते हैं कि यहाँ पे एक आयत, छठी आयत खत्म होगी और गैरिल मग़दूबी अलैहिम ये है सातवीं आयत, ठीक है, क्योंकि सात आयात हैं सूरह फातिहा की, ये याद रखिए, ये कुरान पाक हमें बताता है। अच्छा, अब आप देखेंगे बाज दफा आप किसी इमाम के पीछे खड़े होते हैं, नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में, तो वो ऊंची आवाज में बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि वो उनका ये अकीदा है कि बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा का हिस्सा है। और बाज दफा आप देखते हैं कि इमाम अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट करता है और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, लेकिन ये नहीं होता कि उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी नहीं हुई, बल्कि वो बिस्मिल्लाह खामोशी से पढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से ऊंची आवाज में शुरू करते हैं, जो जहरी नमाजें हैं। इसका मतलब है कि उनका अकीदा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू किया जाए सूरह फातिहा को, और बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा का हिस्सा नहीं है। तो अब आपको ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी कि कोई बिस्मिल्लाह से स्टार्ट क्यों करता है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट क्यों करता है। ठीक है, चलते हैं इस अहम तरीन सूरह की तरफ। पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस सूरत का नजूल कैसे हुआ, ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि ये कैसे सूरत नाजिल हुई थी। तो मुस्लिम की हदीस है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा जिब्राईल अलैहि सलाम बैठे हुए थे कि ऊपर से एक बड़े जोरदार धमाके की आवाज आई। जिब्राईल अलैहि सलाम ने ऊपर देखकर फरमाया, आज आसमान का वो दरवाजा खुला है जो कभी पहले नहीं खुला था। फिर वहां से एक फरिश्ता नाजिल हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा, खुश हो जाइए, दो नूर आपको ऐसे दिए गए हैं कि आपसे पहले किसी को नहीं दिए गए, सूरह फातिहा एक नूर और सूरतुल बकरा की आखिरी आयतें जो हम रात को पढ़ के सोते हैं, उम्मीद है कि सब सोते होंगे रात को पढ़ के ही हो, वो दूसरा नूर, एक एक हर्फ पर नूर है, सुभान अल्लाह। और ये भी बाज रिवायत में आता है कि ये वो फरिश्ता था जो आज से पहले कभी जमीन पे नहीं आया। तो आप ये सोचें कि इस सूरत का नुजूल ही कितना मैग्निफिशेंट है, कितना जबरदस्त है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसको लेकर नहीं उतरे थे, देखें कैसे अल्लाह ताला ने एक स्पेशल तरीके से सूरत को उतारा है। और ये पहली सूरत है जो मुकम्मल नाजिल हुई है, यानी इससे पहले आपको पता है ना सूरह अलक की आयात उतरी थी, इकरा बिस्मी रब्बिक अल्लज़ी अलक, पता है ना आपको, हिरा में। और फिर सूरह कलम भी, और सूरह मुदस्सिर, सूरह मुजम्मिल, इस तरह उनके बारे में डिफरेंट रिवायात हैं, लेकिन वो चंद आयात उतरती थी उन सूरतों की। ये इब्तदा की सूरतों में से है, यानी मक्की सूरत है, तो बिल्कुल शुरू में ये नाजिल हुई। और ये वो सूरत है जो कंप्लीट पूरी सूरा एक ही दफा नाजिल हुई, ऐसी नहीं कि थोड़ी सी आयतें आज और थोड़ी सी आयतें थोड़े दिन बाद, ऐसे नहीं। ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपनी नमाज में उम्मुल कुरान को ना पढ़े, उम्मुल कुरान से मुराद क्या है, सूरह फातिहा, उसको ना पढ़े उसकी नमाज नाकिस है, नाकिस है, नाकिस है, पूरी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस रकत में आप सूरह फातिहा नहीं पढ़ते वो रकत काउंट नहीं होती। अगर आप कभी भूल जाएं सूरह फातिहा पढ़ना किसी रकत में, तो उस रकत को आपको रिपीट करना होगा, सजदा सहव करने से वो रकत पूरी नहीं हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इस सूरत के और भी बहुत से फजाइल हैं, इंशाल्लाह ताला साथ साथ मैं बताती रहूंगी आपको। एक और फजीलत इसके बारे में जो बहुत अहम है वो ये हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला का फरमान है, मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान आधा आधा कर दिया, निस्फ निस्फ कर दिया, मेरा बंदा मुझसे जो मांगता है वो मैं देता हूं। मैंने इस सूरत को पढ़ के, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला इसका जवाब देता है, हमदनी आबदी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है। फिर बंदा कहता है रहमान रहीम, अल्लाह ताला फरमाता है अथनी आला आबदी, मेरे बंदे ने मेरी सना की है। फिर मालिक यौमिद्दीन कहता है तो अल्लाह ताला उसका भी जवाब देता है। फिर इसी तरह और जो भी आगे आगे वो पढ़ता रहता है, अल्लाह ताला उसका जवाब देता है, और आखिर में अल्लाह ताला फरमाता है ये सब मेरे बंदे के लिए है, और ये जो मांगेगा वो उसके लिए, यानी जो भी इसके बाद आप मांगते हैं वो अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। इस सूरत के कई नाम है, एक तो नाम इसका नमाज के हवाले से जो मैंने अभी आपको बताया, तो इस वजह से इसका नाम सूरत सला है, सला, सला की सूरत, सूरत हम्द भी है इसका नाम। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, उम्मुल कुरान को जो नहीं पढ़ता, इसका मतलब है इस सूरा का नाम उम्मुल कुरान भी है। अब ये नाम आप एक एक करके नोट करते जाएंगे, उम्मुल कुरान, ठीक है, उम्मुल किताब भी है इसका नाम, ठीक है। और सबसे मशहूर नाम जो हमारे पास है फातिहा, वो भी इसका नाम है। फातिहा का माना क्या है, ठीक है, एक एक माने को देख लेते हैं। फातिहा का माना क्या है, फातिहा आप कहेंगे खोलने वाली, लोग बहुत सारे सिर्फ यही समझते हैं कि खोलने वाली मतलब है कि जब आप कुरान खोलते हैं तो ये पहली सूरत है, ये कुरान की ओपनिंग है तो कुरान को खोलने वाली सूरत, सिर्फ ये माना नहीं है इसका। खोलने वाली फातिहा, फातिहा किससे है, फतह से, फतह, फतह हम कहते हैं ना विक्ट्री को, कामयाबी को, फतह शिकस्त के मुकाबले में आता है ना, उलट है शिकस्त के। अब फतह का माना कामयाबी, विक्ट्री, फतह उर्दू का भी लफ्ज है, तो इसका मतलब है ये सूरा यानी हर मामले में फतह हासिल करने के लिए है, हर मुश्किल में, हर मसले में फतह याबी के लिए है। दूसरे ओपनिंग का, खोलने का माना, यानी ये किसी भी आप मुश्किल में फंस गए तो उसमें से रास्ता खोल देती है, उसमें आपको उसमें से निकाल लेती है, सेव करती है आपको मुश्किलात में, जो रास्ता बना देती है। तो जिंदगी की बहुत सारी मुश्किलात है, मसले हैं ना, मसलों से तो किसी की जिंदगी भी फारिग नहीं है, हर एक किसी ना किसी मसले में फंसा हुआ। तो ये ओपनिंग देती है, हल दिखाती है, राह निकालती है। सुभान अल्लाह, तो कितनी प्यारी सूरा है। और फिर मैंने आपको कहा ना, उम्मुल किताब, उम्मुल किताब का उम्म मतलब माँ। अब माँ मतलब है कि क्या, असल में माँ का मतलब क्या होता है, जो असल है इंसान की, जो बेस है उसकी। तो असल में ये सूरा जो है कुरआने पाक की एक बेस है, एक खुलासा है पूरे कुरआन का, निचोड़ है पूरे कुरआन का, ठीक है। और इसका एक नाम कुराने पाक में भी आता है, और वो इसका नाम है सबा मसानी। सबा मसानी, सबा मतलब सात, मसानी बार बार दोहराई जाने वाली, मसानी सानिया से है ना, इस नईन दो, तो एक के बारे एक, एक के बाद एक, इसलिए कि इसकी रेपिटेशन बहुत होती है। आप देखिए नमाज में भी आप तकरार करते हैं ना, हर रकत में यही पढ़ रहे हैं, तो कितनी ज्यादा इसकी तकरार हो रही है, पूरी दिन में कितनी बार इसकी तकरार होती है। तो ये सबा मसानी है, बार बार दोहराए जाने वाली सात आयात है। कोई और सूरत हम इतनी नहीं पढ़ते दिन में जितनी इस सूरा को पढ़ते हैं। तो अब समझ आ गया कि ये खुलासा है कुरान का। इससे अंदाजा लगाएं कि हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे तौरात के बदले सूरह फातिहा दी है। ठीक है, तौरात पूरी की पूरी एक बुक जो यहूद के लिए नाजिल हुई थी, उस पूरी बुक के बदले में एक सूरह दे दी, सूरतुल फातिहा। इमाम राजी ने तो इससे 10,000 मसाइल निकाले थे एक सूरह फातिहा से। हजरत अली का फरमान है, अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर करने लगूं तो 70 ऊंटों पर लादी जाए। तो आप सोचेंगे पूरे की पूरी एक आसमानी कलाम है तौरात, उसका खुलासा सूरह फातिहा है, यानी उसका बदल सूरह फातिहा, और पूरे कुरान का खुलासा सूरह फातिहा। तो इंशाअल्लाह ताला ये सूरत देखेंगे। अच्छा, एक और नाम उसका सूरह का रह गया, सूरत शिफा भी इसका नाम है, सूरत शिफा। इसीलिए आप देखते हैं ना, दम भी इस सूरह के जरिए करते हैं। दारमी में ये रिवायत है कि सूरह फातिहा हर जहर की शिफा है। इसका नाम सूरत और रुकिया भी है, रुकिया करने के लिए, रुकिया क्या होता है, दम। तो शिफा भी है इसके अंदर और दम करने के लिए भी है। आपको किसी को अगर दम करना हो, आपको कुछ भी नहीं आता ना, तो आप सूरत अल फातिहा पढ़ लें उस पे और भूख मार दें। अबू सईद रजी अल्लाह तआला उन्होंने जब सांप के काटे हुए शख्स पर इस सूरत को पढ़ के दम किया था तो वो अच्छा हो गया था। तो ये सांप के काटा भी इसके अंदर, इसका भी इलाज है। और फिर हम देखते हैं कि इस सूरत को यानी बहुत ज्यादा अहमियत वैसे भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम बिस्तर पर लेटो और सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ लो तो मौत के सिवा हर चीज से अमन में आ जाओगे, बाजार में ये हदीस है, ठीक है। तो यानी ये कितनी अहम सूरा है ना, इस सूरत को हमें अपने साथ रखना चाहिए, और इस सूरत को यानी अमन भी देती है, शिफा भी देती है। अगर आप जब इस सूरत को पढ़ेंगे तो कहीं ऐसा नहीं है कि मुर्दों पे पढ़ लो, वो तो कहीं नहीं है, पता नहीं क्यों पढ़ा जाता है, लेकिन इसमें इसके माने को आप समझेंगे तो इसमें जिंदों के लिए है कि हम अपने लिए कुछ मांग रहे होते। तो अहम तरीन सूरा को देखते हैं अब। इसका आपने नाम भी आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, इसकी फजीलत भी आपको पता चल गई होगी कि क्या फजीलत है इसकी। जब किसी चीज की अहमियत पता चलती है ना, फिर इंसान उसको उतनी गौर से सुनता है। इसकी अजमत भी पता चल रही होगी कि कैसे नाजिल हुई ये सूरा, तो कितनी अजीम सूरत है ये, इस सूरत के क्या क्या फजाइल हैं। आज हम इंशाअल्लाह ताला इस सूरत की पहली सिर्फ 3 आयात पढ़ेंगे। और ये कुरान पाक की अजीम तरीन सूरत, सोच लें कि अल्लाह ताला ने अपना कलाम शुरू करने के लिए जिस सूरत का इंतखाब या जिन आयात का इंतखाब किया होगा वो कितनी अजीम होंगी। सोचे ना, जो शुरुआत होती है, इंसान कहता है बेस्ट चीज से शुरू करें। जब हम भी कोई बात करने चलते हैं, कहते हैं कोई ऐसी बात करूं कि स्टार्ट ही जबरदस्त हो, तो स्टार्ट बड़ा हम उसके ऊपर तवज्जो देते हैं ना कि स्टार्ट किस तरह करूं। तो अल्लाह का कलाम किस लफ्ज से या किन कलिमात से स्टार्ट हुआ होगा, सोचिए वो कितने अजीम होंगे। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मौता इमाम मालिक में यह हदीस है, कि उबई बिन काब को आवाज दी और फरमाया कि मस्जिद से निकलने से पहले मैं तुम्हें ऐसी सूरत बताऊंगा कि तौरात, इंजील और कुरान में इस सूरत के मिसल नहीं है। यानी इस सूरत जैसी कोई सूरत है ही नहीं, इवन कुरान में भी नहीं है, तौरात और इंजील में भी नहीं है। सोच सकते हैं कि वो कौन सी सूरत है। हजरत आपको वही बिन काब बड़े वो हुए, मतलब उनको तजस्सुस हुआ, फरमाते हैं या रसूल्ला वो कौन सी सूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम नमाज में शुरू में क्या पढ़ते हो, तो उन्होंने सूरह फातिहा ही पढ़ी। फरमाया यही वो सूरत है, सबा मसानी। ठीक है, तो कितनी अजीम सूरह आप पढ़ने जा रहे हैं, फिर सोचें इस जैसी तो कोई और सूरह है ही नहीं। तो कितने गौर से फिर इस सूरत को सुनेंगे। बेहतरीन सूरत को ले, अल्लाह का सारा ही कलाम बेहतरीन है, मगर जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें कि ये अजीम सूरह है, तो वो कितनी जबरदस्त होगी। तो गौर के साथ, दिल की तवज्जो के साथ सुनना है। जब भी हम क्लास में बैठे, दिल हाजिर होना जरूरी है। डिस्ट्रैक्शंस जो हैं उनको दूर रखते हैं। फोन वगैरह को इस वक्त अगर आप दूर रख देंगे तो बहुत बेहतर होगा आपकी यकसुई के लिए। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन को, सबसे बड़े जो हमें शैतान है ना, वो इसी फोन के जरिए ही आता है, जो हमें बार बार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो तावुस पहले पढ़ें आप भी, मैंने तो पढ़ा, आप भी पढ़ेंगे, बसमला पढ़ेंगे। और ये कुरान दिल पे उतरा था, दिमाग पे नहीं, दिल पे उतरा और दिल से दिल तक पहुंचता है, तो दिल की हाजिरी जरूरी है। सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जब बैठते थे ना सीखने के लिए, तो इतने साकित बैठते थे कि जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठे हुए हैं, कि अगर जरा भी हिलेंगे तो परिंदे उड़ जाएंगे। ऐसे बैठते थे, बिल्कुल स्टिल होके, इतनी तवज्जो से सुनते थे। तो अगर आपका जहन बीच में भटकने लगे तो उठें, वुजू करें, दोबारा आउजु बिल्ला पढ़ें और फिर बैठें। ठीक है, उम्मीद है कि कोई भी इस वक्त बिस्तर में नहीं लेटा होगा और बिस्तर में लेट के ये सूरह नहीं सुनेगा। ठीक है, इंशाल्लाह बताना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب سے پہلے میں آپ کو لفظی ترجمہ لکھاؤں گی ٹھیک پہلی سورہ دیکھتے ہیں پہلی آیت الحمد ال سب تمام حمد تعریف لی دو اس کو للہ کو دو آپ حصوں میں تقسیم کریں लिल्लाह लिखें आगे लिखें लाम जेर ली प्लस अल्लाह ये दो मिलके लिल्लाह बना लिए अल्लाह के रब जो रब है अल आलमीन तमाम जहानों का अर रहमान बहुत मेहरबान है अर रहीम बार बार रहम फरमाने वाला मालिक मालिक है
यौम दिन का, अदीन जजा सजा के या बदले के। ठीक है, बस यहां तक आपका आज का लेसन है।